ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, और आज का श्लोक संख्या है 48। कृपया मेरे विचित उत्तिष्ठ उत्तिष्ट राजर्षे इमाम उदधि मेखला दसोभ्य शत्रुबंधुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदधि मेखला दसोभ्य शत्रुबंधुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदधि मेखला दस्युभ्य शत्रुबंधुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ राजर्षे इमाम उदधि मेखला दस्यभ्यो शत्रुबंधुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठ उठि, उत्तिष्ठ उठि राजर्षे, हे राजर्षि, इमाम यह पृथ्वी, उदधि समुद्र से, मेखलाम घिरी हुई, दस्युभ्य चोरों से, शत्रुबंधुभ्य दुष्ट राजाओं से, बिभ्यतिम अत्यधिक डरी, पातुम रक्षा करना, अर्हसी तुम्हें चाहिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए, जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तात्पर्य, जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म स्थापित करते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, धर्म का अर्थ है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करें।
धर्म का पालन करने के लिए भक्ति की जाती है, जिसमें विशेषकर श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे 9 विभाग है। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता है तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि भगवत गीता 9:34 में कहा गया है, मन्मनाभ मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम वैशसी युक्तवेग आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, मुझ में पूर्णता लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उनका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती हैं। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति में उभरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है, अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाया जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं तथाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गर्गशे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम ऐसे उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा प्रणाम अर्पण करता हूँ और आपके आशीर्वादों की अभिलाषा करता हूँ, जिससे मैं श्लोक के ऊपर कुछ बोलू। तो ये जो श्लोक है, इसमें एक शिष्य की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है कि जब उस शिष्य का गुरु से विरह हो जाता है या उसके गुरु चले जाते तो उस समय उसकी कैसी दयनीय अवस्था रहती या कितनी आर्तता रहती कि वो जो विरह है उसे वो सहन नहीं कर पाता। उसे लगता है, अभी जैसे वैदर्भ को यहाँ लग रहा है कि उसके पति, उन्होंने प्राण छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें आशा है कि वो उठ जाएंगे। और वो उन्हें उठने के लिए इसलिए कहती है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर संकट आ सकता है, जैसा कि जो पृथ्वी है या जो जमीन है या पृथ्वी है जो पानी से घिरी हुई, उसको बचाना चाहिए। तो यही हर शिष्य का भाव होता है कि उनके गुरु उन्हें इन सब जो संकट है उनसे रक्षा करे, क्योंकि इस संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है और आपत्ति विपदा ये सब चीजों से भरा हुआ है। जैसा हमारे जो मंगल गुरुवाष्टकम है उसमें हम बोलते हैं संसार दाव अनुख त्राणय कारुण्य घनानाथ। तो जब जंगल को आग लगती है तो उसे ना फायर ब्रिगेड बचा सकते हैं, ना ये आर्टिफिशियल रेनिंग भी बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता, आप सिर्फ देख सकते या उसमें भस्मीभूत हो सकते, ये दो ही प्रेरणा रहते उधर, कुछ नहीं कर सकता। हालांकि इतना एडवांस है, लोग चांद पर जा रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, लेकिन वो जमीन के ऊपर की आग बुझा नहीं सकते, है ना। जो जंगल को आग लगी वो सिर्फ न्यूज रिपोर्टर्स जाके फोटो क्लिक करेंगे, सरकार भी अनाउंस करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, वो आग उनके सामने जल रही होती। और ये पूरे जो वैज्ञानिक है उनके सामने ये बड़ा क्या है, लज्जास्पद, ये वो कह रहे हैं कि हम बड़े ये है, लेकिन ये सामान्य चीज को भी वो जो पृथ्वी पे घट रही है उसको भी वो सुलझा नहीं सकते। तो इस प्रकार ये संसार ऐसे सब दुखों से भरा हुआ है और उसमें अगर किसी के ऊपर गुरु का अनुग्रह नहीं है तो वो बेबस हो जाता, उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो जाती। तो हमें अपने गुरु का संग लेना है, सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर, क्योंकि जो शरीर का संग है या जो हमें गुरु की वपू का जो लाभ होने वाला है वो चिरकाल नहीं, क्योंकि कभी ना कभी हर व्यक्ति को ये धरातल छोड़ना है। तो इस प्रकार जो आध्यात्मिक संबंध है उसका कभी भी ह्रास नहीं होता है। तो इसलिए हर शिष्य को उस स्तर पर उठना चाहिए कि जिससे वो अपने गुरु का आध्यात्मिक दृष्टि से उनको देखे और उनके आदर्शों का पालन करे। नहीं तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक चिंता व्यक्त करते हैं कि जब भी कोई आचार्य चला जाता है तो वहां पर अधर्म आ जाता है, और भले शिष्य जब आचार्य थे तब प्रामाणिक दिख रहे होते हैं या बहुत एंथुजियास्टिक उत्साही दिख रहे होते, लेकिन जैसे ही आचार्य चले जाते तो शिष्य भी चले जाते और वो जो संप्रदाय रहता वो भी चला जाता, वो कुछ रहता ही नहीं धरातल। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, ये कुछ नई चीज नहीं है। या अगर जो संस्था बची है तो भी उसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय हो जाते, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें एक सूचना दे रहे हैं कि जो व्यक्ति आचार्यों का अनुगमन करता है या उनका सच्चा शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें सुझाव दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब आचार्य जाते हैं तो जो शिष्य है उनके अंदर एक तो गर्व आ जाता है या दूसरा उनके अंदर अनर्थ आ जाते हैं, ये दोनों में से एक होता है उनके साथ। और गर्व से उनको लगता है कि मैं नेक्स्ट आचार्य हूं, और उसके लिए फिर सब जन आचार्य बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, वो झगड़ा ही करेंगे। अगर नहीं तो उनको लगता है कि मेरे आचार्य के अंदर कुछ त्रुटि है, मेरे को कुछ ज्यादा पता है, तो वो डिवेशन से दूसरा कुछ चल करते। और ऐसा बहुत बार हो चुका है, तो मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। जैसा है पहला है एक जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें जब जीसस क्राइस्ट चले गए उसके बाद उनका धर्म का प्रचार होने लगा, तो उनमें भी दो विभाग है, एक है प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक और दूसरे है ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक। तो एक पक्के है जो जीसस को ही आखिरी मसीहा मानते और उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन चलते, और दूसरे है कि वो बोलते कि जीसस नहीं बाकी सब भी है ऐसा। तो इस प्रकार उनके अंदर भी विवाह है बड़ा एज, और उसी साथ साथ फिर मुस्लिम जो संप्रदाय उसमें भी जब पैगंबर चले गए तो उनके अंदर भी ये शिया और सुन्नी ये दो विभाग, हालांकि एक ही गुरु है उनका, लेकिन दोनों का ऐसा झगड़ा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये तो भारत के बाहर की बात कर रहा हूँ, मैं भाई भारत के अंदर की कुछ बताना चाहता हूँ और उसके बाद हमारे संप्रदाय के अंदर का बताना चाहता हूँ। तो जो अभी हमारा श्री संप्रदाय है उसमें भी जब रामानुजाचार्य चले गए तो ये वहां पर भी दो प्रकार हो गए, एक है वड़ी कलाई और दूसरा है टंग कलाई ऐसा कुछ। तो वहां पर भी लोगों का इतना शुद्ध संप्रदाय है और रामानुजाचार्य वहां पर उनके गुरु है, तभी भी जो हमारा अहंकार है वो इतना मजबूत है कि वो डिवाइड हो जाता, एक दूसरे को सुनते नहीं। तो इस प्रकार ये दो विभाग वहां पर भी। और जब सीसी में भी बताया जाता है कि अद्वैताचार्य उनकी भी जो लड़के थे उनके जो पुत्र थे उसमें से भी कुछ लोग जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय गौर की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय हो। तो जैसे अद्वैताचार्य जैसे महान आचार्य है उनके घर में भी उनके पुत्रों के अंदर क्या परस्पर विरोधाभास है, कुछ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन किए और कुछ लोगों ने अपना अपना कुछ तो चालू कर। तो ये भय सब जगह पर है और यहाँ पर हालांकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब आचार्य जाते हैं तो शिष्य लोग झगड़ा करते हैं कभी कभी, कुछ कुछ शिष्य तो आचार्य जाने का भी क्या बोलते प्रतीक्षा नहीं करते, उनके सामने झगड़ा करने चल पड़ते थे, तो वो तो आचार्य का और दुख हो जाते। तो भक्ति ठाकुर ने देखा कि जब उनके शिष्य जो बाग बाजार में मंदिर बनाया गया था तो रूम के लिए झगड़ा कर रहे थे, तो भक्ति सिंह ठाकुर को दुख लगा और वो बोलते हैं कि मंदिर में क्या है फायर है, तो वो आग अलग आ गई, वो आग को बुझा नहीं सकते, अहंकार को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो ये प्रभुपाद जी ने देखा है उनके सामने कि उनके जो गुरु भाई है उनके अंदर भी मत विरोध होता रहता है था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये जो इस्कॉन संस्था है उसे चिरकाल बनाए रखने के लिए प्रभुपाद जी ने व्यवस्था ऐसे की कि वहाँ पर जीबीसी रहेगा और जीबीसी के अंडर टेंपल प्रेसिडेंट रहेंगे और टेंपल प्रेसिडेंट उनके नीचे बाकी सब सामान्य भक्त रहेंगे। तो विशेष योजना श्री प्रभुपाद जी ने की है और तभी भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद इधर भी तो अलग से सेक्ट हो गए, एक ऋत्विक जो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे आखिरी गुरु है और कोई हो नहीं सकता। तो ये तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि लोग जो भगवान से विरोध कर चुके हैं वो तो गुरु से करना कुछ बड़ा चीज नहीं है ना, और गुरु से पहले तो अपने इमीडिएट अथॉरिटी या ये जो हम देखते हैं कि उनका सुनना नहीं सुनना ये दो ही कर सकते हैं, एक तो सुनेंगे नहीं तो नहीं सुने, उसके बीच में कुछ नहीं रहता। तो अगर हम छोटे छोटे चीजों से सुनना नहीं चालू करेंगे तो भगवान का सुनना तो दूर की बात है, और धर्म माने क्या है भगवान का आदेश का पालन करना। और ये जो तथाकथित दूसरे लोग है वो सोचते कि हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे, लेकिन वो समझते नहीं कि जो भगवान का आदेश है वो तो भगवान उनके सामने वो अर्जुन के जैसे नहीं कि उनको भगवान बताएंगे, लेकिन भगवान बताएंगे कैसा, हमें कैसे भगवान बताएंगे, वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा। तो हमें हमारे गुरुजनों का सुनने का आदत डालनी चाहिए, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हम ही हमारे ऊपर संकट लेके आएंगे, और बाद में लोग क्या करेंगे जब गुरु नहीं रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे मैं मेरे गुरु को असली से जानता हूँ और मुझे ज़्यादा पता है, मैं कुछ तो अलग खोलूँगा और मेरे वहाँ पर फॉलोअर्स क्या होना चाहिए मेरा सुनना चाहिए। लेकिन फॉलोअर्स भी थोड़े दिन के बाद देखेंगे कि आपने भी आपके गुरु का नहीं सुना, तो वो फॉलोअर्स आपके फॉलोअर्स नहीं रहेंगे, वो भी अपना अलग चालू कर देंगे। और यही भाट चल रहा है, जो संप्रदाय में नहीं है लोग वो सब अपने मन से एक एक दुकान खोल के बैठते, ये डाइंग लिविंग या ऐसा वैसा सब जन कल्याण के लिए वगैरह, और फिर लोग बाद में वो जाने के बाद उनके भी लोग अलग से कुछ तो खोलते बैठे, तो वहाँ पर कड़ी नहीं रहती, कुछ संप्रदाय नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। लेकिन जो हमारा ये चार संप्रदाय है उसमें पहली शिक्षा जो शिष्य को दी जाती है कि वो अपने गुरुजनों का अनुसरण करें, उनके दिए हुए आदेशों का पालन करें। और असली शिष्य कौन है, जो असली गुरु कौन बन सकता है, जो असली शिष्य है ना, जो प्रामाणिक शिष्य है वही जाकर आगे गुरु बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मौर्य आज्ञा है तो उनकी आज्ञा से कोई गुरु बनता है, ऐसा नहीं कि मन में आया है तो कोई भी चल हो गया गुरु बनना, ऐसा नहीं। तो ये असली संप्रदाय का लक्षण है, जहाँ लोग प्रामाणिक गुरुओं की स्वीकार करते हैं। और ये संबंध जो है गुरु और शिष्य का, उसके अंदर दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। नहीं तो वो संबंध अगर जहां दायित्व नहीं है वो संबंध कैसा है, वो फंसाने वाले संबंध। जैसा हम देखते हैं कि कोई लोग अवैवाहिक संबंध रखते तो वहां पर कुछ जिम्मेदारी नहीं रहती, वहां पर एंजॉयमेंट रहता है, मैंने सुख रहता है, शारीरिक सुख रहता है, लेकिन वहां पर जिम्मेदारी नहीं रहती है ना, तो उससे किसी का भी लाभ नहीं होता है। लेकिन जो विवाहित है, जो सबके सामने जिन्होंने व्रत लिया है कि मैं आजीवन ये व्यक्ति का पालन करूंगा, तो उस विवाह जीवन में संबंध के साथ साथ दायित्व भी है ना। तो बाहर के लोग गुरु का स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन वो धर्म का प्रचार कर रहे और दिखा रहे कि हम भी धार्मिक है, वो कैसा है, वो हालांकि लगता है कि हमसे ज्यादा वो लोग सज्जन है और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं, डिवोटी केयर मीन्स ख्याल रखते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन वो सब खोखला है क्योंकि उसके अंदर परंपरा का जोड़ नहीं है। हालांकि बहुत अच्छा दिख रहा है, उनकी स्माइल या उनका गेस्चर या उनका संहारना या उनका मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वास्तविक क्या है, वो भगवान से संबंधित नहीं, तो उससे किसी को भी कुछ लाभ होने वाला नहीं। वो भौतिक जगत का और एक दूसरा रूप है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक संप्रदाय से लोग जुड़े हुए वहां पर हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा होगा, प्लस माइनस दिख रहा होगा, या कुछ क्या बोलते हैं तनाव वगैरह लग रहा होगा, लेकिन वो अच्छा है, वहां पर वो लोग क्या है, भगवान से जुड़े हुए। तो इसलिए हमें लगना नहीं चाहिए कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक से मैनेजमेंट भी नहीं करते, इससे अच्छा मैं दूसरे संस्था में चला जाऊँ जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे, तो वो कुछ लाभकारी नहीं हो, तो आपको वहां पर भौतिक सुख ही मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। और हालांकि अगर जो प्रामाणिक संस्था है उसमें भौतिक सुख ना रहे लेकिन वहां पर कुछ असुविधा रहे, लेकिन व्यक्ति जो वो संस्था है वो भगवान से जुड़ी हुई है, उसे हर एक को लाभ होने वाला है, तो उस समय हमारे अंदर धैर्य रहना चाहिए और हमारे अंदर सहनशीलता रहनी चाहिए और हमें पार्ट ऑफ सॉल्यूशन बनने का प्रयास करना चाहिए, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। तो हमें अच्छा शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए और प्रामाणिक प्रतिनिधि बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अन्य जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको हम भगवान से जुड़ा पाए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला सूत्र बताते हैं यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आचार्यों के असली शिष्य बनने के काबिल हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं आचार्य के असली शिष्य स्थिति से उभरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते। तो ये महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि शिष्य को अपने गुरुओं की आदेशों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। और हर गुरु का क्या आदेश है, इस्कॉन में क्या आदेश मिलता है सबको, चार नियमों का पालन करे, सोलह माला जप करे और जो नवविधा भक्ति है उसमें जुड़े रहे। तो इस प्रकार इतना ही करना है हमें, और कुछ बड़ा चढ़ा कर कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं कि एक पैर पे खड़ा रहना है या ब्यूटी बढ़ाना है या हाइट बढ़ाना है या वेट कम करना है, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, चार नियमों का हम पालन करें और सोलह माला का जप अच्छे से करें और जो भगवान की नवविधा भक्ति है उसमें दृढ़ता से लगे रहे। अगर ये सिंपल तत्व पर हम अगर कायम रूप से लगे रहेंगे तो हम असली रूप से अपने गुरुजनों की शिष्य बन सकते। और यही चीज अगर हम करेंगे तो हमारे ऊपर बाकी के संकट आएंगे नहीं। तो ये जो अधार्मिक संकट है ना, बाकी लोगों से हम प्रभावित होना या हमारे अंदर लगना कि हमारी संस्था में कुछ कम है, मैं कुछ जोड़ूंगा या तोड़ूंगा, ऐसा कुछ, तो ये सब चीज करने की जरूरत। तो अगर हम हमारे प्रामाणिक रूप से अगर हम हमारे गुरुजनों की सेवा करेंगे, उनके दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन भी भला होगा और जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा उनका भी भला होगा। नहीं तो कोई अच्छा फ्रिज है या अच्छा वॉशिंग मशीन है, वो अच्छा दिखने के लिए है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। आप उसके अंदर अच्छे आइटम भी रखेंगे, केक रखेंगे या कुछ आइसक्रीम रखेंगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप खोलेंगे तो वो सब खराब हो जाए। इसी प्रकार बाहर जो संस्था वगैरह लग रही है कि बहुत अच्छी है लेकिन उसमें किसी का भी लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं। तो इसलिए हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें प्रामाणिक गुरुजनों का शरण मिला है, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और ये उनका ही दायित्व नहीं आचार्यों का कि हमारा उद्धार करें, लेकिन ये हमारा भी दायित्व है कि हम उनके क्या बोलते हैं, उनकी सीमा के अंदर रहे, है ना, और उन्हें दिए गए आदेशों का पालन करें। नहीं तो कभी कभी हमें कुछ सुधारना के लिए कुछ सुझाव मिलता है लेकिन हम उसे स्वीकार दें, हमें लगता है कि हम भी किसी से कम, हमारे अंदर इतने अच्छे गुण, कोई कैसा सुझाव दे सकते, तो ये अहंकार ही हमें पहले दूर लेके जाएगा। तो बाकी आचार्य ने उसमें कमेंट्री देते समय बोला है कि अनर्थ, एक जो अनर्थ है छह अनर्थ, उसका भक्त के ऊपर अटैक हो जाते जब गुरु नहीं रहते तब, या उसके अंदर दम्भ अहंकार ये चीजें आ जाती, तब वो क्या है, गुरु की सेवा किसी को सुनने के लिए रेडी नहीं होता, है ना, और गुरु नहीं तो फिर तो कोई उसको बता ही नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सुधार सकते, है ना। लेकिन जो असली शिष्य है उसे गुरु की वाणी अन्य भक्तों के मुख से भी सुनाई देती है ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप ही मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव, अपने शिष्यों को बोलते होते हैं, और जो अप्रामाणिक शिष्य है वो तो अपने गुरु को भी गुरु नहीं समझते, तो ये बड़ा दुर्देव है। तो हमें गुरु क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, हम क्या शिष्य बनकर कर रहे उसके ऊपर विचार करना चाहिए, वो तो उनका कर्तव्य कर रहे, लेकिन हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए। और अगर हम वो असली तरह से करेंगे तो भगवान जो चैत्य गुरु है जो हमारे साथ सदैव है वो हमें दुर्भाग्य की परिस्थिति से बचाएंगे। नहीं तो कुछ कुछ ऐसे भी शिष्य हो गए जो गुरु को ही ठुकरा दे, उनको ही फीडबैक वापस दे दिए या उनको बोले कि मुझे इस संस्था में कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ना भाव भक्ति चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, यहाँ पर सिर्फ साधना भक्ति दी जा रही, हम जा रहे उधर गोपी बनने के लिए, या ऐसा वैसा कर कर लोग ना वो छोड़ के चले जाते उनके गुरु के साथ। तो ये कुछ नया चीज नहीं है। तो हमारा जब अहंकार हमारे ऊपर भारी हो जाता है तो हमें किसी का भी आवाज सुनाई नहीं देता, ना गुरु का सुनाई देता है ना शास्त्रों का सुनाई देता है, किसी का भी सुनाई नहीं देता। तो इस परिस्थिति से हमें बचना है तो हमें सदैव नम्र बनकर निष्ठापूर्वक भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि ये जो आचार्य है उनका क्या विशेष अनुग्रह है ये पूरे जगत पर, उसके बारे में भागवतम में बताया गया, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहे चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो इस धरातल पर जो भी व्यक्ति है वो भगवान से क्या है, विमुख है। तो ऐसे जो विमुख व्यक्ति है वो कुछ धर्मशील नहीं रहने वाला। जो भगवान से विमुख है वो व्यक्ति अधर्म ही करने वाला, और वो जो कोई अधर्म करता है तो वो सुखी रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते, यही शास्त्र विस्तृतम वर्तते कामकारत। हाँ, तो वो उसको शांति नहीं मिलता ना, सुख मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं, उसे कितना भी वो ढिंढोरा पिटे हम शांत है, हम सुखी है, लेकिन वो है नहीं। वो सिर्फ दिखावा कर, वो सब क्या है, एडवर्टाइज का स्माइल है। बाकी आप जाएंगे उनके जीवन में तो वो रो रहे होते, दुखी रहते, है ना। तो जो अधर्मशील व्यक्ति है वो दुखी रहते। तो ऐसे जो कृष्ण से विमुख है, जो अधर्मी है और जो दुखी है, उनके ऊपर कौन दया दिखाए? तो वो दया दिखा रहे हैं कौन? आचार्य। इसीलिए वो इस धरातल पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते। ऐसा नहीं कि वो पिकनिक के लिए जा रहे, वो जा रहे किस लिए? अनुग्रह करने के लिए। तो ये उनकी महत्ता है आचार्य आचार्यगणों का, कि वो बाकी अन्य जो बद्ध जीव हैं उनके ऊपर वो अनुग्रह कर। तो इसलिए हमें भी अगर आचार्यों का असली में अनुग्रह चाहिए तो पहले हमें क्या करना है, हम हमारे खुद के ऊपर अनुग्रह करें, कि हम जरा कृष्णा से सन्मुख हो जाए, धर्म का पालन कर और सुखी हो जाए, उनके आदेशों का पालन कर। ऐसा नहीं कि हम ही खोखले और दुनिया को बचाने जा रहे तो कुछ लाभ नहीं होना। इसलिए हमें असली अपने गुरुओं का अनुग्रह स्वीकारना चाहिए, उनके जो हमारे ऊपर उपकार है उसको याद रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस जो हमारा क्या बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड वाला हृदय है, कृतज्ञ जो हृदय है, वही दूसरों का भला कर सकता है, अन्यथा हम खुद का भी भला नहीं कर पाए। तो ऐसे ये जो संत है, जो श्रील प्रभुपाद जी है, जिन्होंने हमें इतना बड़ा अनुग्रह दिया, इतना बड़ा संस्था दिया है, तो उनके चरणों में रहकर अगर हम ये नवविधा भक्ति का पालन करें, चार नियमों का पालन करें और हमारे गुरुजनों की सेवा करें, तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा और हमें ये जो अन्य डर है उसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहाँ पर तुकाराम महाराज का एक अभंग लूंगा जो आचार्यों के बारे में है, तो उतना एक्सप्लेन करके मैं विराम दूंगा। कायया संतांचे मानुपकार मज निरंतर जागवीति, काय देवायासी भावे उतराई ठेविता पाई जीव थोड़ा, सहज बोलने हितोपदेश करुणी साया सी कविति, तुका मने वत्स धीनुचिया चित्ती तैसी मजयेति संभाळीत। तुकाराम महाराज ये जो आचार्य है उनको कैसा, किससे उपमा दे रहे? एक गाय से, जैसा गाय अपना बछड़े का संभालती, वो भले ही घास खाती है लेकिन बछड़े को क्या देती है, दूध देती। ऐसा नहीं कि बछड़े को बोलती तू ही घास का, ऐसे नहीं। तो उसी प्रकार आचार्य लोग बहुत कष्ट सहन किए हैं उन्होंने, है ना, और उनके शिष्य लोग उनका कष्ट किया रहता है लेकिन शिष्य तो दूध पी रहे होते, है ना, तो उन्हें थोड़ा ही घास कुछ खिलाए। तो ये आचार्यों के उपकार है ना। और वो क्या बोल रहे, आचार्यों का जो चलना उठना बैठना है वही हमारे लिए क्या है, उपदेश। उनका व्यवहार ही हमारे लिए शास्त्रों का पूरा सार है। तो वो अपने ज्वलंत उदाहरण से वो दिखा रहे, जैसा हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने खुद को क्या कर दिया, क्रूसीफाई कर लिया, उनके हाथ में पैर में खिले ठोकी गई। लेकिन अभी कोई भी जो उनका फॉलोअर है किसी को कुछ नहीं होता, कोई खिला नहीं उनको ठोकता। या जैसे हमारे संप्रदाय में इतने आचार्य लोगों का 26 मार्केट या 22 मार्केट में पिटाई हो गए चाबुक से, हमारे लिए तो फैन रहता है, सब कुछ रहता है, तभी भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन उनको तो इतना सिर्फ हरिनाम करके इसलिए पिटाई कर रहे थे। तो ऐसा हमारे आचार्य लोगों ने इतना सहन कर कर हमें इतना प्रेम से दिया है, तो ऐसे ही आचार्यों को ये मेरा हमारा पूरा जीवन भी कम है। अगर हम पूरा जीवन भी उनके चरणों में नौछार कर देंगे तभी भी वो कम गिरने वाले, लेकिन बद्धावस्था में हमें थोड़ा कुछ करते तो हमको लगता है कि हम उपकार कर रहे हैं प्रभुपाद जी के ऊपर या किसी हमारे गुरुजन के ऊपर कि मैं सलामला करता हूँ चरण का पालन, मैं बड़ा उपकार कर, ये हमारी बद्धावस्था का दुर्गति। लेकिन जो सच्चे शिष्य है उसको तो लगेगा कि ये मेरा ये जीवन भी कम है ना। तो जैसा वो गुरु हमारे गुरु पूजा में हम बोलते हैं कि जन्म जन्म भी हम हमारे गुरु की सेवा करें तभी भी वो कम है। तो ऐसा अगर कोई शिष्य अपने गुरुजनों के बारे में सोच रहा है तो वो सो नहीं सकता ना? जैसे प्रभुपाद जी सोए नहीं रात को और बुक लिखी, क्या उनकी प्रेरणा थी? वो सिर्फ भक्ति ठाकुर का आदेश का पालन करने के लिए वो दिन रात जगे रहे। तो अगर हम हमारे अंदर भी सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाए अपने गुरुजनों के प्रति और हमारे पूर्ववर्त आचार्यों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम भी सो नहीं पाएंगे। तो यही हमारे लिए एक जागृत उत्तिष्ठ बोला गया, तो हमें भी उठना है अपने नींद से और अपने गुरुजनों ने जो हमारे ऊपर उपकार किए उसके लिए जागृत होकर उनकी सेवा में लगे रहे। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं कम से कम आप लोग सहयोग कीजिए, कॉपरेट कीजिए। फाइट तो करना आसान है, हर चीज़ में मतभेद रहना कोई बड़ा चीज़ नहीं, वो तो कोई मूर्ख भी हो सकते, लेकिन मतभेद के बाद भी अगर सहयोग करेंगे, थोड़ा अपना ईगो कम कर दूसरों का हाँ करेंगे और मानेंगे, तो हम प्रभुपाद जी का संस्था को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। यानी तो जितना हमको दिया है उसको भी हम क्या करेंगे, गवा देंगे, और इससे बड़ा दुर्दैव और कुछ नहीं शिष्य के। तो हमारे गुरु की जो संपत्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, या जितना है उतना तो मेंटेन करें, है ना, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम किसी को ला नहीं रहे तो एटलीस्ट जाना नहीं चाहिए, एक काउंट तो कम नहीं करेंगे, तो बने रहेंगे जितना हो सके उतना। प्रभुपाद जी के आशीर्वाद और अन्य शिष्यों के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद। तो मेरे से कुछ अगर ज़्यादा बोल दिया तो कृपा करके क्षमा कर दीजिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। ये बड़ा लंबा मार्ग है, अगर हम नंबर बन के रहेंगे तो टिकेंगे, नहीं तो है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।